Om Shanti. 1 June 1973. अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को जब आग लगेगी उस आग से बचने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जीवदान कैसे दे सकेंगे, यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। तो अव्यक्त मुरली है, 1 June 1973। बाबा कह रहे हैं, अभी से ही ऐसा समय आ रहा है जो सारे भंबोर को जब आग लगेगी उस आग से बचने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। कौन सी बातें? जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा होगा? सबसे पहले क्या देना है? जल, शीतलता, शांति का दान अर्थात जल। और जल डालने के बाद फिर जिसको जिस जिस शक्ति की चीजों की आवश्यकता है, किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, वह पूर्णी करनी पड़ेगी। आप लोगों को कौन सी आवश्यकता पूर्णी करनी पड़ेगी? अलग अलग सहनशीलता की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, परखने की शक्ति, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में क्या करना है? एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जीवदान कैसे दे सकेंगे। यह अपने आप को पहले से ही तैयार करने के लिए देखना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं, संसार में आग लगेगी। कौन सी आग लगेगी? दो प्रकार की आगे, एक है स्थूल और दूसरी है सूक्ष्म। स्थूल आग जो हम जानते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रकार दिए हुए, Class 1, Class 2, Class 3, Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, इस तरह से अलग अलग प्रकार की स्थूल आग है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर फाइटर्स की आवश्यकता होती है। उसी तरह सूक्ष्म आग भी है। सूक्ष्म आग कौन कौन सी है? जो कि संसार में लगेगी, एक तो विकार की आग, दूसरी बदले की भावना की आग, पाप की आग, विकर्मों की आग और पश्चाताप की आग, नफरत की आग। तो विकार और सूक्ष्म स्वरूप संसार में भी ये भी आग है, पैशन, वासनाओं की आग। तो ये सारी आग एक तरफ होगी और एक तरफ स्थूल आग होगी। पहली कहा जाता है कंबस्टिबल, अग्नि, ज्वलनशील मटेरियल्स, वो सारा कुछ जलेगा, जैसे वुड, फाइबर या इस तरह की जो भी चीजें होती है, वस्तुएं, जिसको क्लास ए कहा गया है। एशिया में हर देश का अलग अलग है, यूरोप का अलग है, यूएस का अलग है, एशिया में क्लास ए कंबस्टिबल मटेरियल। दूसरा होता है फ्लेमेबल गैसेस, गैस, ऐसे बहुत सारे गैस है कि वहां अगर आग लग गई तो चारों ओर फैल जाती है। अभी अभी जो मुरली चली थी अव्यक्तवाणी 83 संडे की, जिसमें बाबा ने कहा था 84 में कुछ होगा, कुछ तो होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर 1984 में, और दिसंबर अक्टूबर 84 में भी 3 दिन तक जो चला था, When the great tree falls, the earth shakes, इंदिरा गांधी, बाबा ने उसकी सूक्ष्म भविष्यवाणी 1 दिसंबर 1983 की मुरली में दी थी कि 84 में कुछ हलचल होगी। तो एक तो ये थी कि हजारों 31st अक्टूबर से लेके तो 3rd नवंबर तक 3 या 4 दिन सिख राइट्स हुए थे 84 में, जिसमें 8000 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी। सरकारी आंकड़े 3000 थे पर 8000 से भी ज्यादा। और ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो आग अलग अलग तरीके से लगाई जाएगी। जिंदा जला दिया गया था लोगों को 84 में, घरों को जला दिया गया था, ऐसा भयंकर रूप होगा, दुकान से लेके तो सब कुछ। तो गैसेस, वो भी एक आग होगी, स्थूल फ्लेमेबल गैसेस। फिर है फ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास सी, फ्लेमेबल सॉलिड्स, इलेक्ट्रिक फायर क्लास डी और ई, किचन, किचन फायर जिसको क्लास के भी कहा जाता है कभी कभी। ऐसी 6 प्रकार की स्थूल है, फिर इसमें बहुत सारी अलग अलग देशों में वैरायटीज है। तो जब आग लगती है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर आग लगेगी, लिक्विड्स, गैस, सॉलिड, इलेक्ट्रिक, कंबस्टिबल मटेरियल और किचन फायर्स। एक ही आग लग जाती है तो कितना जबरदस्त नुकसान होता है। जब एक साथ हर तरह की आग लगेगी तो किस तरह के गैसेस वातावरण में क्या होगा, कैसा होगा। एक तो स्थूल आग लगेगी चारों ओर और दूसरी तरफ सूक्ष्म आग लगेगी, और सूक्ष्म आग उस आग से ज्यादा जलाएगी। आत्मा के लिए कहा जाता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। संस्कृत में आग को पावक कहा जाता है, पावक अर्थात जो पवित्र बनाता है। लैटिन में फायर को यूरोस अर्थात दैट विच प्यूरिफाइज, आग को प्यूरिटी से जोड़ा गया है, प्योर बनाता है। कहते हैं आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, परंतु फिर भी आत्मा जलती है किससे? विकारों में वो ताकत है जो आत्मा को जलाती है। स्थूल चीजें, स्थूल अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती, पर विकार रूपी अग्नि आत्मा को झुलसा दे, आत्मा झुलस जाती है उसमें, काली हो जाती है, आग लगती है आत्मा में। तो एक तरफ तो स्थूल आग है जिससे शायद कोई अपने आप को बचा ले, भाग जाए बचाकर, परंतु जो सूक्ष्म अग्नि है, और ये अग्नि बाहर भी लगेगी और अंदर भी लगेगी, और अंदर जो आग लगेगी उससे स्वयं को बचाना, उसके लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। क्योंकि चिंगारी भी होगी तो बाहर आ जाएगी। जो विकार, जो भोग की कामना 10 साल 20 साल 30 साल पहले थी और फिर ज्ञानी योगी पवित्र जीवन था, वो आग भी चिंगारी बनकर इधर आ जा सकती है यदि उसे पूरा राख नहीं बनाया गया। फिनिक्स नाम का पक्षी होता है, जल के मर जाता है, राख से फिर उठता है, मिथक है, मिथ बट स्टिल कहा जाता है। उसी तरह संस्कार जल गया था, राख हो गया था, फिर भी फिनिक्स पक्षी की तरह उठकर बाहर आ सकता है, क्योंकि वातावरण में, वायुमंडल में आग होगी, ये उसको ला सकती है। कितनी आवश्यकता है चेकिंग की। ज्यादा खतरा बाहर की आग से नहीं है, आंतरिक आग से है। अर्नोल्ड टॉर्नबी नाम का एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ था कभी, अर्नोल्ड टॉर्नबी ने एक भविष्यवाणी की है। उसने लिखा है कि वर्तमान जो सभ्यता है और पुरातन सभ्यता, पुरातन सभ्यताओं का जो नाश हुआ, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं का जो यूनान की सभ्यता, मिस्र की, भारत की, उनका नाश बाहर की आपदाओं से हुआ है, बाहर के शत्रुओं से हुआ है, बाहर के विरोध से हुआ है। बट जो आने वाली सभ्यताएं हैं, उनका नाश बाहर के शत्रुओं से नहीं होगा। अर्नोल्ड टॉर्नबी, आज से 100 वर्ष पहले हुआ है, उसने लिखा है अपनी बुक्स में कि आने वाली सभ्यताओं का नाश आंतरिक शत्रु से होगा, आंतरिक द्वंद्व से होगा, अंतर द्वंद्व से होगा। बाहर का द्वंद्व उसे नाश नहीं कर पाएगा। उसी तरह आत्मा का नाश बाहर से कम, अंदर से ज्यादा होगा। पश्चाताप की अग्नि होगी, पाप की अग्नि होगी, विकर्मों के स्मृति की अग्नि होगी, ये अग्नि उसको ज्यादा जलाएगी, वो अग्नि कम। यहां बाबा तो कह रहे दोनों अग्नियां एक साथ हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये जो अग्नि है, जब भी इस तरह की भी अग्नि लगती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, हलचल में आता है। ऊपर से जो स्थिर दिखने वाले हैं वो हलचल में आ जाते हैं। ये आग लगने के बाद गैस में आग लग गई, लिक्विड में आग लग गई, सॉलिड में आग लग गई, इलेक्ट्रिक फायर हो गई, किचन में आग लग गई, या कंबस्टिबल मटेरियल, उसको 6 प्रकार की अग्नि, उधर 6 क्लासेस ऑफ फायर, तो हलचल पैदा कर देते हैं। हलचल वो ना पैदा करे पर दूसरे करेंगे ज्यादा, मीडिया सब कुछ, और डरा देंगे व्यक्ति को। तो बाबा कह रहे जब संसार में ऐसी आग लगेगी तब तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करोगे, क्या करोगे? शांति का दान। परंतु जिसमें खुद ही आग लगी है, द माइंड ऑन फायर, द इग्नाइटेड माइंड, जो खुद ही विकारों में जल रहा है, वो शांत कैसे कर पाएंगे? तो कितना स्वयं को अंदर से शांत करना पड़ेगा, शीतलता का जल देना पड़ेगा। पानी डालने के बाद फिर क्या करते, फिर तो वो बात की बात है, पहले तो खुद ही शांत होना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, और शांति की किरणें फैलानी पड़ेगी। ये कार्य है और ऐसा समय आने वाला है। जबकि संसार में आग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, नए नए प्रकार की आग आएगी जो हमने सोची नहीं थी। ये तो मुख्य छह है, ऐसी असंख्य प्रकार है और अलग 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 एक्सप्लोजिव्स क्या 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 है, वो सब एक साथ होगा। तो अग्नि रोधक फायर प्रूफ जैकेट पहनना पड़ेगा, और हमारे पास क्या हो वो फायर एक्सटिंग्यूशर अग्नि शमन यंत्र, और हमें बनना पड़ेगा वो अग्नि शमक दल। बाबा ने कहा है मुरलियों में, इस संसार में काम विकार की आग लगी है, तुम हो कौन फायर एक्सटिंग्यूशर, अंदर जरा भी आग ना हो, विकार की आग, पाप की आग, इवन पश्चाताप की भी आग नहीं, उससे भी बाहर। तो स्वयं को शांत करना, स्वयं को स्थिर रखना, उस मॉक ड्रिल्स की प्रैक्टिस करना जैसे मेडिकल में मॉक ड्रिल्स की जाती है। उस दिन बता रहे थे मॉक ड्रिल्स में क्या करते हैं, जैसे कोई मास कैजुअल्टी आ जाए तो मॉक ड्रिल्स की जाती है। सबसे ज्यादा इजराइल में बहुत ज्यादा प्रयोग और संशोधन हुआ है मॉक ड्रिल्स का, कैसे इमरजेंसी 100 पेशेंट्स तो मॉक ड्रिल्स कैसे क्या की जाए, कैसे ट्राइज किया जाए, वैसे ही स्पिरिचुअल मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता है कि संसार में चारों तरफ पाप विकर्म विकार काम क्रोध एक साथ आग लगी है और हमें फायर फाइटर बनकर खुद की भी रक्षा करनी है उनकी भी रक्षा करनी है। ऐसे नहीं कि उनकी रक्षा करने गए और हम खुद जल गए, अपने को भी बचाना उनको भी बचाना, उसमें क्या किया जाए उसकी स्वयं हरेक को वह स्पिरिचुअल मॉक ड्रिल डिसाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास भी जैसे वो फायर फाइटर होता है, उसके भी अलग अलग क्लासेस है फायर फाइटर फायर एक्सटिंग्यूशर के, वो जो है ना लाल कलर का, उसके भी अलग अलग क्लास होते हैं। ऐसा स्पिरिचुअल फायर एक्सटिंग्यूशर आध्यात्मिक या रूहानी अग्नि शमन यंत्र हम खुद बन जाए, फायर ब्रिगेड। तो मन ही मन इसकी प्रैक्टिस भी हो कि अगर ऐसी आत्माएं चारों तरफ से आ गए कि जिनके अंदर विकारों की आग लगी हुई है, काम वासना से जो पीड़ित है, क्या हम उसको शांत कर पाएंगे या हम खुद ही उसके प्रभाव में आ जाएंगे। क्रोध से पीड़ित है, अत्यंत क्रोध में है, इतना क्रोध में है, इतना क्रोध में है, कोई सामने का व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है, क्या उस समय उसे शांत किया जा सकता है? या उसे शांत करना तो दूर की बात है, खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सुनने को ही तैयार नहीं, सीधा मार नहीं आ रहा है। क्योंकि संसार की आत्माएं तो अनजान है ना, उन्हें तो पता ही नहीं। आने वाले संडे में बाबा ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है संसार की आत्माओं के लिए, वो लोग समझते हैं हम कौन है, VIP। बाप कहते हैं वो है वेरी इनोसेंट पर्सन, वो अनजान है, बेचारे, उनको तो पता ही नहीं, वो अपने आप को VIP समझते हैं, परंतु बाप उनको कहते हैं VIP वेरी इनोसेंट पर्सन, और तुम कौन हो, सेंट, तुम हो सेंट, वो है VIP। तो सेंट VIP सेंट जो होगा वो खुद बहुत स्टेबल होगा, खुद बहुत शांत होगा, पानी की तरह कितने भी आघात उस पे हो कुछ नहीं। तुकाम ने संत सोसी जगाचे आघात, संत वो है जो जग के आघात को सहन करे, जगत पीड़ा देगा, मारेगा, तड़पाएगा, शरीर को नहीं, स्थूल सूक्ष्म मन को, वो सारे जो सहन करता है वो संत। इसके लिए तो संत महाराष्ट्र में कहते गजानन महाराज आना चाहिए, पर हमारे घर में नहीं, बाजू के घर में, क्योंकि वो आ गया तो साधु बन जाएगा और वो वैसे कपड़े नहीं पहनते थे, वो बन जाएगा। बहुत अच्छा है, हम उनकी पूजा करेंगे, पर हमारे घर में हमारा बेटा जन्म नहीं लेना चाहिए, बाजू वाले के घर में आ जाए तो ठीक है। और उसको त्याग भी बहुत करना पड़ता है, संत बहुत ऊंची उपाधि है। तो संसार में आग होगी, स्थूल आग, सूक्ष्म आग, और हमें क्या बनना है, फायर एक्सटिंग्यूशर, हमें क्या बनना है, फायर फाइटर, हमें क्या बनना है, फायर ब्रिगेड, और जल डालना है, कौन सा, शांति का जल, प्रेम का जल, आगे क्या करना है, और फिर जो जिसकी आवश्यकता है वो पूर्ण करनी है। किसकी क्या क्या आवश्यकता होगी, बाबा ने भी उसकी बहुत बड़ी लिस्ट यहां पर दी है। ये बाबा कह रहे 73 में ये सारी बातें बताई जा रही है। किसको निर्णय करने की शक्ति चाहिए वो दो, जिसको सहन शक्ति चाहिए वो दो, किसको समेटने की चाहिए वो दो, किसको परखने की चाहिए वो दो, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता है वो दे, वो दो। जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणिजात, ज्ञानेश्वर ने लिखा है, संत ज्ञानेश्वर ने, कि ऐसा सबको मिल जाए जो जिसको चाहिए वो उसको मैं दे सकूं। जो जे वांछिल, जिसकी जो इच्छा है वो उसको प्रदान करो। ये सबसे बड़ी अवस्था है। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत करने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। हम बाप का ऐसा परिचय नहीं देंगे कि ये बाप है, ये ज्योतिबिंदु है, ये परमधाम में है, उसके ये 36 गुण है, वो इस समय आता है, इतना सब टाइम नहीं है। आत्मा है, सामने है, वो यहां पर साक्षात्कार करे, संडे की मुरली जैसे उनको लगे कोई आसमान से सितारा आया है। केवल इशारा कि ये तुम्हारा बाप है बस, और आत्माओं को अनुभव हो जाए। उसके लिए हमारा उससे उतना गहरा कनेक्शन चाहिए। तो उस समय आवश्यकता है, वह अभी से ही इकट्ठी करनी है। क्या इकट्ठा करना है, स्पिरिचुअल पावर्स, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है। महाभारत में 3 प्रकार के बलों की चर्चा है, बाहुबलम, भीष्म शैया पर लेटा हुआ है, युधिष्ठिर सामने है उसको समझा रहा है ज्ञान कि सुन, 3 प्रकार के बल है, बाहु स्थूल, परंतु उससे भी शक्तिशाली है बुद्धि बल। एक साइंटिस्ट होता है पतला दुबला सा होता है परंतु क्या, हाँ जैसे हॉकिंस, पतला दुबला होता है पर उसके पास कौन सी शक्ति होती है, बुद्धि का बल होता है, इंटेलेक्चुअल पावर्स। स्थूल शायद नहीं है पर इंटेलेक्चुअल है, तो ज्यादा कौन है शक्तिशाली, स्थूल। हमारे पास आईसीयू में एक बॉडी बिल्डर आया था जो कि नेशनल लेवल का वो था, क्या कहते हैं उसको, रेसलर, तो वो ऐसे पूरा उसका क्या कहते हैं 6 packs वो ऐसा था, और उसको लूज मोशन हो गया था, तो उसको लाइन लेने गए थे तो वो रोने लगा बोला मैं ये नहीं, मैंने आज तक सुई नहीं लगाई है, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, और इतना रोया उसको एकदम ऐसे पकड़ के रखा था, तो वो एकदम वो था तो एक है शरीर, दूसरा है बुद्धि का बल, तीसरा उससे भी और एक शक्तिशाली है, आत्मबल, योग बलम, बाहुबलम, बुद्धि बलम, योग बलम। बुद्धि बल से आत्मा आईएएस बन सकती है, आईएएस ऑफिसर, पर कोई ब्राइब देने आए उसको रेजिस्ट करने का पावर 3rd को है। इंटेलेक्चुअली बहुत आगे जा सकता है कोई, परंतु नॉट सबसे शक्तिशाली व्यक्ति संसार में वो है जिसके पास आत्मबल है। महात्मा गांधी के पास क्या था? बुद्धिबल। उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बहुत सारे लोग थे संसार में। शारीरिक बल तो आत्मबल। सेल्फ कंट्रोल इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। सेल्फ कंट्रोल जिसके पास है वो सबसे बड़ी शक्ति है। उससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। बाकी सारी शक्तियां फेल हो जाती है। शरीर का बल फेल हो जाएगा। इंटेलेक्ट, अगर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। एक हमने बचपन में एक मूवी देखी थी मराठी, उसमें दिखाया था एक सर्जन है और वो सर्जन इतनी परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट है कि उसको सब याद है। दो पेशेंट्स एक साथ आते हैं 20 साल पहले, दोनों के एक को इधर गांठ है राइट साइड में, एक को लेफ्ट साइड में, उसमें दिखाया है। वो 20 साल के बाद भी जानती है कि ये पेशेंट को राइट साइड थी और ये पेशेंट को लेफ्ट साइड थी। इतनी स्ट्रांग इंटेलेक्ट है उसका और इतनी फेमस है। बाकी सब उससे थोड़ा बहुत ईर्ष्या करते हैं हॉस्पिटल में। और उसके जीवन में, उस मूवी में दिखाया है, एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि अचानक उसके पिताजी आ जाते हैं, जो कि जिस पिताजी ने उसको ऐसा था कि इस पिताजी ने मेरी मां को मारा है, और वो आके कहता है कि मैंने तेरी मां को नहीं मारा है, और वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, एकदम से डिप्रेशन में ही चली जाती है। उसके वो पूरी स्किल्स, ऑपरेशन करती करते हाथ ऐसे ऐसे कपने लगते हैं, जबकि वो टॉप लेवल की थी, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था उसके पास, पर एकदम इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया और उसकी सारी स्किल सब कुछ वो चली गई, कुछ भी नहीं रहा। एंटी डिप्रेशंस, डिप्रेशन की दवाइयां चालू हो गई। जैसे उसके पिताजी आके कहते कि मैंने मारा ही नहीं था, और वो जो छोटी थी जब, उसने विटनेस दिया था कि इसने मारा है, मेरे पिताजी ने मेरी मां को, और वो आके अब कहता है कि मैंने मारा ही नहीं था, तुमने गलत साक्षी दी है। वो पूरी कहानी सुनाता है उसको, उसकी मां क्या क्या थी और वो क्या समझती थी। वो डिस्टर्ब हो जाती, गॉन, पूरा डिप्रेशन। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इज गुड, पर उससे भी बड़ी शक्ति जो है, जो आत्मा को स्थिर, अचल, अडोल रखती है, वो है स्पिरिचुअल पावर, आत्मबलम। तो इन अग्नियों से बचने के लिए स्वयं में क्या भरना है? आत्मबल, स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को। बाबा के शब्द क्या है देखो, वह अभी से ही इकट्ठी करनी है। हमारा समय किस में जा रहा है? स्पिरिचुअल पावर से भरने में जा रहा है या केवल संसार और संसार की चीजों में जा रहा है? आंतरिक हमारे पास जो समय है, उस एक एक समय को कौन कैसा बिता रहा है? बाहर के कार्य और फिर एकांत में अकेले में बैठकर व्यक्ति क्या करता है? बंद कमरे, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, अकेले में जो वो कर रहा है, वही वास्तव में उसका चरित्र है। हम एकांत में बैठ के क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल पावर से भर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं? इंटरनेट खाली सामने है, जो चाहे वो देखा जा सकता है। देख क्या रहे हैं? वासना की तृप्ति कर रहे हैं या आत्मा को शक्तियों से भर रहे हैं? आत्मा को भर रहे हैं या रिक्त कर रहे हैं? सटल स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को भरना है। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट काम आर फेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। सबसे ज्यादा शक्ति तब होगी जब सबसे शांत कोई होगा। हाइएस्ट साइलेंस जहां होगा, वह हाइएस्ट स्पिरिचुअल पावर्स मैनिफेस्ट करेगी। आइंस्टाइन ने एक जगह बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसने लिखा है कि मेरे पास समस्या होती है, I think 99 times and nothing comes. I think 99 times and nothing comes. I sink in silence and truth comes unto me. मैं मौन में चला जाता हूं और सत्य मेरे पास आ जाता है। उस मौन में, उस एकांत में, उस एकांत के क्षणों में जब आत्मा स्वयं को सब तरह से डिटैच कर देती है सारी एक्टिविटीज से और स्व में स्थित हो जाती है, वहां पर स्पिरिचुअल पावर्स भरना चालू होती है आत्मा में, और वही पावर्स काम आती है फिर सारे दिन भर जो भी होगा वो पावर्स काम आएगी। तो स्वयं को शक्तियों से भरना एक, दूसरा इतना पावरफुल बनाना कि वो अग्नि हम पर प्रभाव न डाल सके। एक क्लास में बताया था ऐसी हमें अपने अंदर एक सर्कल ऑफ फायर निर्माण करना है। ये परमानेंट एक सप्त अग्नि का घेरा निर्माण करना है। जैसे मैं आत्मा ये हूं, चलते फिरते सात अग्नियां, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक अभ्यास है योग का प्रयोग कि मैं चल रहा हूं, उठ रहा हूं, जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर मेरे इर्द गिर्द ये सप्त अग्नियां हैं, सप्त अग्नि का गोला, सप्त अग्नि का घेरा, साथ साथ लेकर चलना है इसको। सबसे पहले ज्ञान अग्नि, निरंतर पॉइंट्स का चिंतन करते रहो, ज्ञान की पॉइंट्स का। बुद्धि में, नेक्स्ट संडे की जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा है, बुद्धि में पॉइंट्स को निरंतर सोचते रहो, ये रत्न है, खेलते रहो। ज्ञान की अग्नि। दूसरी है पवित्रता की अग्नि, प्यूरिटी की पावर, फायर ऑफ प्यूरिटी, फायर ऑफ नॉलेज, फायर ऑफ प्यूरिटी। ऐसा कोई कर्म ना हो, ऐसा कोई इमेजिनेशन ना हो। अनचेस्ट इमेजिनेशन इज एज गुड एज अनचेस्ट एक्शन, विवेकानंद ने कहा है, अनचेस्ट इमेजिनेशन इज एज गुड एज अनचेस्ट एक्शन। विकारी कल्पना करना बैठकर, केवल बैठकर सोचना, किसी का प्यार मिल रहा है, किसी का हाथ पकड़ के ही घूम रहे हैं, ऐसा ही दिखाया जाता है, देखते हैं लोग और सोचते हैं मुझे भी कोई ऐसा कोई साथी मिल जाए, किसी को घुमा ही रहे हैं। अनचेस्ट इमेजिनेशन, कर्म तो किया ही नहीं हो, ना ही करने की कोई संभावना है, परंतु रमन आत्मा इसमें कर रही है। अनचेस्ट इमेजिनेशन, सेंशुअल फैंटसीज, केवल सोच रही है आहा और आनंद का अनुभव कर रही है। This is as good as unchaste action. Unchaste action, अपवित्र कर्म से जो शरीर में बदलाव होगा, वही unchaste imagination से भी वही परिवर्तन होंगे, वही उत्तेजनाएं imagination में भी है। Imagination is more, is powerful than knowledge, Einstein ने कहा है। ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली imagination है। प्यूरिटी, प्यूरिटी, फायर ऑफ प्यूरिटी की अग्नि दूसरा। तीसरा फायर ऑफ योगा, योग अग्नि, योग की अग्नि निरंतर जला के रखो तो क्या होगा। अरविंद भाई आपने क्लास कराई थी, जानवर नहीं आएंगे, माया रूपी जानवर नहीं आएंगे। योग अग्नि। चौथा वैराग अग्नि, संसार से वैराग, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, उपनिषद के वाक्य है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है, यहां कुछ भी सार नहीं है। वैराग की परिभाषा उपनिषदों में केवल दो शब्दों में दी है, शरीर मिट्टी संसार असार, इसे कहा जाता है वैराग। इसमें सारा सब कुछ आ गया, शरीर मिट्टी है, खेल खेल खिलौने से खेल रहे हैं, मिट्टी से खेलना है, चाहे उसको ठीक कर रहे हैं, चाहे उसकी देखभाल कर रहे हैं, चाहे दूसरों के मिट्टी को ठीक कर रहे हैं, कुछ भी, सब आ गया उसमें, है ये मिट्टी, शरीर मिट्टी और संसार असार, अनित्यम असुखम लोकम। हे अर्जुन सुन, ये संसार अनित्य असुख है, लोकम है। तो चौथी योग अग्नि, वैराग अग्नि, तपो अग्नि, तप की अग्नि, तप करना है, आंतरिक साधना। अगली त्याग अग्नि, त्याग की अग्नि, परमात्मा प्रेम की अग्नि, और सेवेंथ लगन की अग्नि। सप्त अग्नि का घेरा हमारे इर्द गिर्द हो, परमात्मा प्रेम की अग्नि, और इन चीजों के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को लाना है। कल एक बहुत सुंदर अनुभव हमको हुआ कि ये जो मिनिस्टर क्वार्टर है वहां से जा रहे थे तो अचानक एक सुगंध, कुछ अगरबत्ती थी वहां पर, जैसे ही वो अगरबत्ती की सुगंध आई, वो वही अगरबत्ती थी जो हमने 15-20 साल पहले किसी आश्रम में बैठकर एकदम से अशरीरी जब हो गए थे, वही सुगंध कल आई वहां पर। और एकदम से जैसे आया यहां से सीधा वो 10-15 साल पूरा पहले चले गए 2002 में। और वहां उस दिन जो हुआ था 2002 में, उस आश्रम में जहां हम बैठे थे, सारे सन्यासी बैठे थे और हम उनके बीच में बैठे थे, और वो मृदंग बज रहा था और वो सुगंध चल रही थी और वो गीत बज रहा था, खंडन भव बंधन वंदितो माए। और ऐसे लगा कि बस यहां से सीधा केवल वो सुगंध आई और एकदम से अशरीरी हो गए। और वो उस समय जो भगवान को पाने की तड़प, प्यास, भगवान क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारा वैसे के वैसे इधर प्रकट हो गया। तो हम सोच रहे थे एक सुगंध में इतनी शक्ति है कि आत्मा को 15 साल पीछे छोड़ भेज देती है। यदि ऐसी ही स्मृतियां सतयुग द्वापर सतयुग त्रेता युग किया जाए तो हम सीधा उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे जहां पर विकर्म असंभव हो जाएंगे। केवल स्मृति की बात है। और जैसे ये स्मृति का बताया, वो क्योंकि वो सुगंध हमने इतने 15 साल में वही अगरबत्ती की सुगंध आज तक नहीं सूंघी कभी, वो वही थी, एग्जैक्ट वही जो 15 साल पहले की थी। और वो सूंघते ही ऐसा लगा कि बस हम वहीं पहुंच गए हैं और अशरीरी हो गए परंतु हरेक की अपनी अपनी होगी, हरेक की अलग अलग होगी, हरेक का गीत अलग अलग होगा। जैसे आप बाबा के ज्ञान में पहले दिन मधुबन में आए और बाबा, जैसे एक बहन ने अनुभव सुनाया था, बाबा ज्ञान में आई मधुबन में, कोर्स किया और आ गई और किसी ने बिठा दिया बाबा के इधर कमरे में और एकदम से गीत बज गया कमरे में या शांति स्तंभ में, और गीत बज गया भगवान हमारा साथी है। और उसने कहा कि इतने आंसू आने लगे क्या बताऊं, पहली बार पहला ही यज्ञ का उसने वो गीत सुना, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग चलते हैं। अब वो जो गीत है उसके लिए सबसे विशेष गीत है। बाकी लोग तो गीत सुनते हैं, गीत पूरा भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन सा गीत बजा। हम तो अपने अमृत वेला सकाश देने में ही लगे थे, 4:45 बजे वो गीत बजा, हमें पता ही नहीं, पूरा भी हो गया। पर उस आत्मा के लिए वो गीत विशेष है। ऐसे ही हर आत्मा के लिए कोई गीत, कोई संगीत, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई प्रसंग, कोई समय, कोई खुशबू विशेष हो सकती है। वो आते ही, क्योंकि वो जो अनुभव था वहां का, वो इतना स्ट्रांग था कि उसमें वो बाबा कहते ना सेकंड में अनुभव होता है। हम हमेशा सोचते सेकंड में कैसे अनुभव हो सकता है, हम तो पूरा एक घंटा भाषण धुआंधार करने के बाद में भी किसी को अनुभव नहीं होता है। ये सेकंड में अनुभव कैसे कराए? आत्मा को अनुभव कराना अर्थात तो उसको सीधा शरीरी अवस्था में पहुंचा देना। और वो जब होगा वो बताकर नहीं होगा, अकस्मात होगा, अकस्मात हमें भी नहीं पता रहेगा, कोई निमंत्रण नहीं आएगा पहले कि कल मैं आ रहा हूं, अपने आप अनुभव होगा। जब कोशिश करेंगे अनुभव करने की तो नहीं होगा, आज मैं अनुभव करके रहूंगा, रात भर बैठो, पूरी रात बैठे कोई अनुभव नहीं, छोड़ दो, शांति से बैठ जाओ। द स्टेट ऑफ नो माइंड, ज़हन कहता है नो माइंड की स्टेट में पहुंच जाओ। उस नो माइंड की स्टेज में एक्सपीरियंस विल हैपन। जैसे आर्किमिडीज को राजा ने कहा, ये लो गहना, इसमें बताओ ये नकली लग रहा है, रोल्ड गोल्ड, इसमें बताओ कितना एलॉय मिक्स है। और दिन रात सोचते रहा, कई हफ्तों तक सोचते रहा, क्या है क्या है क्या है कैसे, सारे फॉर्मूले लगा दिए, नहीं हुआ। एक दिन नहा रहा था अपने टब में, सोचा छोड़ो अभी कब तक सोचते रहेंगे, और अचानक वो आ गया, वहां से चिल्लाते हुए निकला नंगा, यूरिका 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 यूरिका, सीधा राजमहल में, क्योंकि उसको आंसर आ गया, वहां पता चल गया उसको आंसर। द स्टेट ऑफ नो माइंड, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, केंशो, ज़ेन कहता है केंशो, साटोरी, निर्वाण, कैवल्य, केवल अवस्था, बीएटीट्यूड। इन अवस्थाओं में ही अध्यात्म का ज्ञान आता है, बाकी अवस्थाओं में नहीं आता। विचार सागर मंथन आवश्यक है, पर परम ज्ञान, परम अनुभव, ये सब रिक्त हो जाता है, एम्प्टी, तब ज्ञान उतरता है। तो अपने आप को इन सप्त अग्नियों के घेरे में रखना है, अग्निशमक यंत्र बनना है, और इन अग्नियों को शांत करना है, स्वयं को भी शांत करना है। ओम शांति।